हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 45 से 50 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अख्यांतिमरहंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्र अहं न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 13 जिसका शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य श्लोक संख्या 45। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि आप समस्त जीवों के स्वामी हैं, आपके सारे कार्य अद्भुत हैं। हम जैसे साधारण बुद्धि वाले लोग भगवान के कार्यों की आश्चर्य को अपनी बुद्धि की सीमा में जान नहीं सकते, और जो जानने का प्रयास करते हैं वे निश्चित ही मातीय भ्रष्ट है। इस जगत में हर एक व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है, इसलिए बद्ध जीव को अपनी भगवान अपनी अहितु की कृपा प्रदान करेंगे, तभी ही जीव भगवान की शरण ग्रहण कर सकेगा। तो ऋषिगण भगवान से अपनी स्तुति के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सवै बद्ध भ्रष्टमितस्तवैषति यः कर्मणां पारमपार कर्मणां यद्योग माया गुणयोग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। सवै बत स मन वह वै मन निश्चय ही बत हाय भ्रष्ट मति अर्थात मति भ्रष्ट या मूर्ख है, तव यानी तुम्हारे एष्यते अर्थात इच्छाएं यह जो यह कर्मणाम पारम कर्मणाम मतलब कर्म का पारम मतलब सीमा पार कर्मणम अर्थात असीम कर्मों वाले का। भगवान के कर्म तो असीम है, उनके कर्मों के माप को कोई सीमा तो माप नहीं सकता, लेकिन वो क्या है, वो भ्रष्ट मतिस्त जो वो बहुत ही उनकी बुद्धि गृणत है, जो भगवान की कार्यों को अपनी बुद्धि की सीमा में मापने का प्रयत्न करते हैं। और यद्योग माया गुण योग मोहि यद योग माया यद माना जिससे योग अर्थात योग शक्ति माया माना शक्ति गुण योग यानी गुण यानी भौतिक प्रकृति के गुण योग माना शक्ति मोहितम अर्थात मोहग्रस्त वो भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहग्रस्त हैं। विश्वम समस्तम भगवन विदेहिशम विश्वम यानी ब्रह्मांड समस्तम मतलब संपूर्ण भगवन हे भगवान विदेही वरदे शम अर्थात सौभाग्य। अनुवाद हे प्रभु आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है, जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है, कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहितु की कृपा प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनोधर्मी चिंतक यानी ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मति भ्रष्ट हैं। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंगा शक्तियों द्वारा पाशबद्ध है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह उनकी अहितु की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जनतप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई है, जो मनुष्यों की उपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य तो अपनी बुद्धि से साधारण जीवों को भी नहीं समझ सकता है, और भगवान को समझना तो इतने बड़े बड़े जो सत्य लोक या जनलोक तपलोक के निवासी के जो बहुत बड़े ऋषि मुनि वो भी मान रहे कि भाई भगवान के कार्यों की सीमा को माप करना बहुत कठिन है और करा ही नहीं जा सकता, बल्कि जो कोशिश करता है वो भी मति भ्रष्ट है। तो करना क्या है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं। बस जीव अगर कुछ अच्छा कर सकता है अपने लिए, जो ऑस्पिशियस हो, जो उसके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य प्रदान करे, तो बस इतना ही है कि भगवान को संपूर्ण समर्पित कर दे, अपने आप को भगवान की शरण में दे दे, भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा मेरे साथ कीजिए, यही जीव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब साधारण इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े अलग अलग लोकों के निवासी हैं, वो भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसी में अपनी उनकी बुद्धिमानी है, तो फिर हम जैसे लोगों को तो और कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमको बस एक ही काम करना है, भगवान को स्वीकार करके भगवान से प्रेम करना है। यहाँ पर विश्वम समस्तम अत्यंत सार्थक है, जो लास्ट वाली लाइन है ना, विश्वम समस्तम भगवान विदेशम। लोग दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं कि दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वो अपना मानकर उनसे प्रेम करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के हैं। जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्र तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतः वे भी आपको भुला देते हैं, कोई भी आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप असीम हैं, सबसे उत्तम हैं, और सबसे उत्तम कार्य यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतनों के द्वारा क्या काम है सबसे उत्तम, कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही ना किया जाए, प्रत्युत आप हम सबको आशीर्वाद दें, जिससे हम अहितु की भक्ति से आपकी पूजा कर सकें। तो वास्तव में भक्तों, भगवान को समझना संभव ही नहीं है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि यह शास्त्र पढ़ के या इसकी कथा सुन के या फिर यह सत्संग अटेंड करके आप भगवान को समझ जाओगे, तो समझो वो आपको चीट कर रहा है। भगवान समझने की वस्तु नहीं है, और वैसे भी जो समझ में आ जाए वो भगवान कैसे हो सकता है ना? तो भगवान को समझना नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, बल्कि भगवान से आशीर्वाद लेना है, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान के प्रेम कर सके। तो इतना सुंदर है ना, भगवान की स्तुति करने के उपरांत उसके उपरांत मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, इत्युपस्थियमानोऽसौ मुनिभिर् ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्तावितावनिम् मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, इति मना इस प्रकार से, उपस्थियमाना मतलब प्रशंसित होकर, यानी जब भगवान वराह की इतनी स्तुति हुई, उनकी इतनी प्रशंसा की गई, असौ यानी भगवान वराह की मुनि भी अर्थात मुनियों द्वारा, इत्युपस्थियमानोऽसौ मुनिभिर् ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी भी मतलब आध्यात्मिक वादियों द्वारा, ये मुनि कोई साधारण नहीं थे, आध्यात्मिक लोकों के जीव थे, और इन्होंने जब भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, तब सलिले सखुरा, सलिले मतलब जल में, स्वखुर आक्रांते अर्थात अपने ही खुर से स्पर्श हुआ, उपाधन उपाधत्त मना रख कर रखा, अविता यानी पालन करता, अवनिम अर्थात पृथ्वी को, फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही खुर से पृथ्वी का स्पर्श किया और फिर जल के ऊपर उसको रख दिया। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा देवी आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श करते किया, और उसे जल पर रख दिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव विवेशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर रख सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं। मनुष्य उन नियमों की स्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है। इसीलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं, किंतु तो भी कूप मंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अभी हम देखते हैं, एक समुद्र होता है, उसमें हम छोटा सा पत्थर भी अगर डालते हैं तो वो भी फौरन से अंदर डूब जाता है। और भगवान ने इतनी विशाल पृथ्वी जिसके ऊपर कितने सारे पहाड़ कितने सारे पर्वत हैं, उस पृथ्वी को जल के ऊपर इस तरह से स्थित किया कि सारे जीव हैं, कितनी योनियां हैं इस पृथ्वी के ऊपर, कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, कितने सारे बड़े बड़े पशु हैं, लेकिन ये पृथ्वी है कहाँ पर? वो पानी के ऊपर तैर रही है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं। तो ये सब सोचने या समझने की बात ही नहीं है, ये बस ऐसा है कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करके भगवान को की शरण को ग्रहण करने के लिए भगवान ये सब बताते। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो खुद तो पानी के मेंढक की तरह हैं, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसको तो विशाल समुद्र के विषय में पता ही नहीं होता है, फिर भी वो अपनी ओर से व्याख्या करने का प्रयास करता है कि समुद्र इतना बड़ा है, समुद्र इतना बड़ा हो सकता है, चार कुओं के बराबर, पांच कुओं के बराबर। तो समुद्र कोई सीमा नहीं रखता, जिस तरह से भगवान की अचिंत्य शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की इस ऐश्वर्य को, इस आश्चर्यचकित बातों को मुझे समझना है, तो उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयंति ते। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, स इत्थम भगवान उर्वीम विश्वक्सेना प्रजापति रसाया लीलयोनीता अप्सुन्यस्य ययौ हरि। स इत्थम समनवः, इत्थम न इस तरह, भगवान उर्वीम, भगवान यानी भगवान ने उर्वीम अर्थात पृथ्वी को विश्वक्सेना प्रजापति, विश्वक्सेना अर्थात विष्णु का एक अन्य नाम, प्रजापति यानी समस्त जीवों के स्वामी, वह भगवान जो समस्त जीवों के स्वामी है, विश्वक्सेन अर्थात पूरे विश्व की पालन करने वाले हैं, उन्होंने इस तरह से पृथ्वी को प्रजापति जीवों के स्वामी रसाया यानी जल के भीतर से लीलया अर्थात आसानी से उन्नीताम अर्थात उठाया, बहुत ही सरलता से भगवान जल के भीतर गए, पृथ्वी को उठाया जल के अंदर से, और अप्सु यानी जल में न्यस्य अर्थात रख कर ययौ अपने धाम लौट गए हरि। इस तरह से भगवान ने एक छोटी सी लीला की, पृथ्वी को रसातल से उठाया, रण्याक्ष का वध किया और भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर पुनः वो अपने लोक में लौट गए। अनुवाद, इस प्रकार से समस्त जीवों के पालन हार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल से, जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर
वे अपने धाम लौट गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अपरिवर्तित होते हुए और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। जब वे अवतरित लोकों में अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरती होने वाला, अर्थात ऊपर से नीचे आने वाला। ना तो स्वयं भगवान ना ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी चार लाइनों में बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम जैसे जीव होते हैं ना, उनका जन्म क्यों होता है? कर्मों के अनुसार होता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसा वैसा हमको जन्म मिलता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा जन्म मिलेगा, जो गलत कार्य किया है तो उसके बुरा रिएक्शन मिलेगा। लेकिन जो भगवान होते हैं वो कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं, बल्कि भगवान करुणामयी हैं, इसे जीवों पर करुणा करने के लिए आते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी समस्त जन्म मरण के चक्कर से, समस्त कर्मों से, बंधन से छूटे हुए भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं और पुनः अपने कार्यों को संपन्न करने के बाद अपने धाम में चले जाते हैं। और इसीलिए उसे भगवान का जन्म नहीं बल्कि अवतार कहा जाता है। अवतरति अर्थात ऊपर से नीचे आने वाला ही अवतार होता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए भगवान बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, बल्कि अपने भगवान अपनी इच्छा से आते हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए और अपने किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं और उस कार्य को करने के बाद पुनः अपने धाम में वापस लौट जाते हैं। और जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान की इन कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की इन अत्यंत ही दिव्य लीलाओं को का गान करते हैं और इनको प्रेम से श्रवण करते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है वो बताते हुए मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, या एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः श्रवन्ति भक्त्या श्रवयेत वोषति जनार्दनोऽस्य हृदि प्रसीदति। य एवं एताम, य मन जो, एवं मन इस प्रकार, एताम मन यह, हरि मेधसा अर्थात भक्त के भौतिक शरीर को नष्ट करने वाली, हरि मेधसा यानी जो भौतिक हमारी चेतना है देहात्म बुद्धि उसको नष्ट करने वाले हरे यानी भगवान की कथा सुभद्राम, ये कथाएं कैसी हैं? सुभद्राम अर्थात जीव के लिए अत्यंत ही मंगलकारी हैं, हमारे समस्त अभद्रों को नाश करने वाली हैं। कथनीय वास्तव में कहने योग्य है, हम कुछ ना कुछ बोलते रहते ना, तो कथनीय अर्थात कहने योग्य तो भगवान की कथाएं हैं। और क्योंकि वो जीवों का मंगल करती हैं, माइनः उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा कृपालु का श्रवंति भक्त्या, श्रवंति मतलब सुनता है, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, श्रवयेत और अन्यों को भी सुनाता है वा अथवा उषतिम अर्थात अत्यंत सुहावना जनार्दन यानी भगवान अस्य जनार्दन भगवान उसका आशुमना तुरंत उसी टाइम पर जब कोई भगवान की इन मधुर लीलाओं को श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, जनार्दनस्याशुरीदि प्रसीदति, रिदि मना हृदय के भीतर, प्रसीदति मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। अनुवाद, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। हम में से हर एक व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं ना तो मंगल प्रदान होती हैं, ना ही सुनने के लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुण वाली होती हैं। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ हो ही नहीं सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इससे संसार का ताप भी नष्ट होगा। भगवान एकमात्र अपनी अहितु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलाप को पीछे छोड़ते हैं जाते हैं, जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकें। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवान इस लीला को कर रहे होते हैं उस समय तो बहुत कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो भगवान के निकट हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान की कथाएं उतनी ही शक्तिशाली हैं जितना कि स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान और भगवान से रिलेटेड वस्तु और उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आज भी हम जिस कथा को भगवान की इस लीला को सुन रहे हैं वराह भगवान की, तो ये लीला उतनी ही शक्तिशाली है जितना के वराह भगवान के साक्षात दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ प्राप्त होता है इसकी कथा श्रवण करने को। भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर कुछ अत्यंत ही दिव्य मनोहारिणी लीलाओं को करने के उपरांत जब चले जाते हैं तो ये लीलाएं कथनीय हैं, अर्थात यही बोलने योग्य हैं, यही मंगलमयी है, सुभद्र हैं। हम कुछ न कुछ श्रवण करना चाहते, कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब भौतिक है और हम क्योंकि आध्यात्मिक हैं इसलिए जो भौतिक है वो प्रत्येक वस्तु हमारी आध्यात्मिक आत्मा के लिए ना तो शुभ हो सकती है और ना ही मंगलकारी हो सकती है। इसलिए आत्मा का कल्याण यदि करना है तो हमें भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को भक्तों के द्वारा श्रवण करना चाहिए और स्वयं भी उनका गुणगान करना चाहिए। और इससे क्या होगा? जनार्दनुस्याशुरीदि प्रसीदति। हृदय में बैठे भगवान बहुत जल्द ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो मानो विदुर जी ने कहा हो, अच्छा भगवान प्रसन्न होंगे फिर क्या होगा? तो उसका उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषं प्रभो किं दुर्लभं ता विरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्ट्या भजतां गुहाशय स्वयं विदत्ते स्वगतिं परः परां। तस्मिन् प्रसन्ने, तस्मिन् मना जब वो भगवान प्रसन्ने प्रसन्न हो जाते हैं, सकल कलाशिषम, सकल अर्थात समस्त, आशिषम मतलब आशीर्वादों का प्रभु भगवान को, जब वो भगवान जो समस्त प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं वो भगवान जब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, किम दुर्लभम, किम मना उसके उपरांत भला क्या, दुर्लभम अर्थात प्राप्त कर सकना अतीव दुर्लभ या कठिन हो, ताबी यानी उनके साथ, अलम यानी दूर, लव अर्थात लव आत्म भी यानी क्षुद्र लाभ सहित अनन्य दृष्टा अन्य कुछ से नहीं अपितु भक्ति से केवल भक्ति के द्वारा भजतम भक्ति में लगे हुए का गुई गुहाशय अर्थात हृदय के भीतर निवास करने वाले हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान स्वयं विधत्ते स्वगतिम परंपरा स्वयं विधत्ते स्वयं मतलब स्वयं विधत्ते मन संपन्न करता है स्वगतिम यानी अपने अपने धाम में परह पराम यानी परम दिव्य अनुवाद जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.10 में कहा गया है कि भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने वाले शुद्ध भक्त को वह समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल प्रेम से श्रद्धा के साथ सततम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं बस प्रेम से भगवान का भजन किया जाए तो भगवान क्या करेंगे ददामि बुद्धि योगम तब भगवान ही हमें ज्ञान प्रदान कर देंगे कि हमें किस तरह से भगवान को प्राप्त करना है भगवान को प्रसन्न करना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचने के लिए आवश्यक है ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्य किया जाना मूल्यवान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं रहती क्योंकि भक्त की प्रगति का भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं उनके घर पे यदि हम काम करते हैं जो बहुत संपन्न होते हैं तो फिर जो वहां पर काम करते हैं उनके बिजनेस को संभालते उनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा मालिक संपन्न है वो अवश्य हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। उसी तरह से यहाँ जो भगवान की सेवा करते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी उनको मूल्यवान नहीं लगता है और यदि कोई प्रेम से भगवान की सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं क्योंकि भक्त की प्रगति का भार स्वयं उठाते हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है और जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो अगर शरण ग्रहण करता है तो उसकी प्रगति का भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। भगवान हर एक के हृदय में आसीन है और वे भक्त के मंतव्य को जानते हैं तथा उपलब्ध हो सकने वाली हर वस्तु की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में छद्म भक्त जो भौतिक लाभ पाने के लिए उत्सुक रहता है सर्वोच्च सिद्ध अवस्था इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को उसके गंतव्य की जानकारी रहती है। मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें सावधान करते हैं कि आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान आपके हृदय में रहते हैं। तो यदि हम भगवान की भक्ति के नाम पर केवल भौतिक लाभ चाहने के लिए उत्सुकता रखेंगे और हम सोचेंगे कि हम दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या चाहिए? लाभ चाहिए, भौतिक लाभ। हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारी सेवा होनी चाहिए, हमारा ही सम्मान होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक लाभ पाने के लिए उत्सुक रहता है सर्वोच्च सिद्ध अवस्था इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को उसके गंतव्य की जानकारी रहती है। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था ये नहीं है कि इस संसार में हमने बहुत सारे लोगों को चीट कर लिया, बहुत सारे लोगों को अपना चेला बना दिया, उनसे अपनी पूजा करवाना शुरू कर दी। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था ये है कि हम भगवान को कितना प्रसन्न कर पा रहे हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं, निर्मल जन मन सोही मोहे भावे। जिनका मन निर्मल होता है ना, वही मुझे पसंद लगता है। मोहे कपट छत्र छल छिद्र न भावे। जो कपट करते हैं, जो छल करते हैं, जो धोखेबाज हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भक्त का मतलब होता है कि वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, आप सिर्फ अपने उद्देश्य में निष्ठावान बनना है कि मेरा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है और उसके लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान बनकर हमको कार्य करना है। फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। भगवान क्यों नहीं सहायता करेंगे जब हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को ये कहेंगे कि भगवान आपके अतिरिक्त और कौन हमारी सहायता करेगा, आपको हमारी सहायता करनी है। तो भगवान हृदय में बैठे होते हैं, भगवान कोई कार्य नहीं करेंगे, भगवान हृदय में बैठकर आपको ऐसी सोच देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो इसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते, बल्कि इस भौतिक जगत में ही कैसे आनंद पाएं, कैसे दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करें, इसी में लगे रहते हैं। तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं और भौतिक, इसीलिए वो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारावीत, पूरा कथा नाम भगवत कथा सुदाम, आपीय करणा जलीभिर्भवापहाम, आहो विरज्येतवेना नरेतरम। को नाम लोके, को मना कौन, नाम मतलब निसंदेह, लोके यानी संसार में, संसार में कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली पुरुषार्थ जो जीवन के लक्ष्य को, पुरुषार्थ मतलब जीवन के लक्ष्य को, सारवित अर्थात सार को जानने वाला, पूरा कथानम सारे विगत इतिहासों में भगवत यानी भगवान विषय कथा सुदाम अर्थात भगवान विषय कथाओं का अमृत, आपीय करणांजलि भीर भवापहा, आपीय यानी पीकर, करणांजलि भी कर्णों के द्वारा ग्रहण करके, भव अपहाम अर्थात सारे भौतिक तापों को नष्ट करने वाला, अहो हाय विरचियत मना कर सकता है विना बिना नर इतरम मनुष्य प्राणी नरेतरम यानी वो ऐसा मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लेता है वही ऐसा करता है कि वो अपने लक्ष्य को जानने की कोशिश नहीं करता, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अनुवाद देखिए, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्राप्त प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्य से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके या मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के कार्य की कथा अमृत के सतत प्रवाह के तुल्य है। ऐसे अमृत को पीने से इनकार वही कर सकता है जो मनुष्य नहीं है। हर मनुष्य के लिए भगवत भक्ति जीव का सर्वोच्चम लक्ष्य है और ऐसा भक्ति योग भगवान के दिव्य कार्यों का को श्रवण करने से शुरू होता है। केवल कोई पशु या ऐसा मनुष्य जो आचरण में पशु प्राप्य है भगवान का संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार करेगा। संसार में कथाओं तथा इतिहासों के अनेक ग्रंथ हैं, किंतु भगवान की कथाओं के इतिहास या कथाओं को छोड़कर उनमें से कोई भी भवताप के भार को कम करने में समर्थ नहीं है। अतएव जो व्यक्ति भौतिक जीवन का निराकरण करना चाहता है उसे भगवान की दिव्य कार्यों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य की तुलना अमनुष्यों से की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, केवल मनुष्य का जीवन या मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना काफी नहीं है, बल्कि इस मनुष्य देह को प्राप्त करके हमको भगवान की भक्ति करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य एक ही है कि हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करें और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवत धाम में जा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नाम 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।